आगो कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन गज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य स्तोत्र सस्त्री श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला फ्रांसिस्कोन फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौणताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। तो आज हम वो कथा श्रवण करेंगे जो आज के दिन नंद महाराज के घर में उत्सव हुआ, नंदोत्सव। श्रीमद् भागवत में जैसा वर्णन है पहले हम उसको पढ़ के सुनाएंगे, नंद महाराज ने कैसे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज से वर्णन करते हैं। तो इसके पहले की जो घटना है वो आप लोग जानते हैं कि वसुदेव जी अर्धरात्रि में श्री कृष्ण को मथुरा के कारागार से लेकर के नंद महाराज के गोकुल में यशोदा की सैया में कृष्ण को छोड़ देते हैं और यशोदा की जो कन्या है ना योग माया उसको लाते हैं। तो ये सब घटना आप लोग जानते हैं। तो और उस दिन योग माया ने यशोदा को नंद को और सब गोकुल वासियों को इतनी गहरी नींद में सुला दिया था कि किसी को पता नहीं चला माता श्रोता को भी पता नहीं चला कि उनको पुत्री पैदा हुई है या पुत्र पैदा हुआ है। इतनी गाढ़ निद्रा में सोई थी। माता श्रोता को इतना पता चला कि उनको जो है संतान पैदा हुई है, लेकिन पुत्र है या पुत्री है इतना भी उनको पता नहीं चला। परिश्रम जो पुत्र के जन्म का जो परिश्रम था उस कारण से, और निद्रा के कारण पता नहीं चला। सवेरा होने पर पता चला क्या कि कृष्ण का जन्म हुआ है। अब कृष्ण के जन्म का उत्सव सवेरे मनाया गया, रात में नहीं मनाया गया। तो आज के दिन जो है नंद महाराज ने कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। आज गुरुवार है, वो भी गुरुवार था। बुधवार कल थी कृष्ण का जन्म, तो वो भी बुधवार था। 5000 साल पहले जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आज गुरुवार को जो है नंद महाराज ने उत्सव मनाया। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि थी। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि नंद महाराज अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके और समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया। और वे ब्राह्मण शुभ वैदिक मंत्रों का जब पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न कराया। उन्होंने देवताओं और पितरों की भी पूजा करवाई अपने घर में। नंद स्वात्मज उत्मन्ने जाताह्लादो महामन आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनम् जात कर्मात्मजस्य मे कारयामास विधिवन् पितृदेवार्चनम् तदा। तो तात्पर्य में लिखा है कि यद्यपि कृष्ण देव की पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव और देव की इस आनंद को नहीं उठा पाए। क्या? जात कर्म का। कृष्ण के जात कर्म संस्कार का आनंद नहीं उठा पाए। उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि यहां बताया गया है, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण वास्तव में तो मेरा पुत्र है। तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। इसके बाद और बातें हैं। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव होता है, नाल काटने का। अब प्रश्न उठता है कि नाल कैसे काटा गया, क्योंकि कृष्ण तो लाए गए थे, तो फिर नाल काटने वाली बात फिर कहां से आती है। किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था, अतएव इसके लिए कहां अवसर था नाल काटने का। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसीलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। कृष्णानुजा जो यशोदा की पुत्री है योग माया, उसको कहते हैं कृष्णानुजा, यानी कृष्ण की छोटी बहन। इसका मतलब क्या हुआ कि यशोदा से कृष्ण ने जन्म लिया। तो ये बड़ा रहस्य है इसमें। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हो और भले ही कृष्ण का नाल ना काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती हैं। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा है अथवा नहीं कटा है। इतना इतना हर्ष हुआ कि उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पुत्र का नाल पहले से कटा है। इस तरह उन्होंने
बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था, इसलिए इस ये उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। अब नंद महाराज ने कैसे उत्सव किया देखिए। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 20 लाख गौएं दान की, 20 लाख गौएं दान की, और वो गौएं कैसी हैं, वस्त्रों से और रत्नों से सजाई गई हैं। गौओं को ऐसे दान नहीं दिया है कि मतलब वैसे दान दिए, वस्त्रों से और रत्नों से सजाया गया। और कितनी गौएं, 20 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान दी, और तिल के 7 पहाड़ ब्राह्मणों को दान किए, 7 पर्वत किस चीज के, तिल, तिल के, उसमें वस्त्रों से सजाए गए हैं, सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से रत्नों से सजा करके तिल के 7 पर्वत ब्राह्मणों को दान दिए। धेनू नाम नियुते प्रादान विप्रे व्या समलंकृते शिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभम बराबृतां। अब शुद्ध किया, अपने को शुद्ध किया नंद महाराज ने। जैसे समय बीतने के साथ साथ धरती शुद्ध होती है और दूसरी संपत्ति शुद्ध हो जाती है, इस नाम से शरीर शुद्ध होता है, और संस्कार से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से अपना धन शुद्ध होता है, संतोष करने से मन शुद्ध होता है, और आत्मज्ञान से कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होती है। तो सब प्रकार से नंद महाराज ने अपने को शुद्ध किया। काले निस्नान शौचाभ्याम संस्कार है तपसे ज्ञान शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्याम द्रव्याण्यात्मात्मे विद्ययाम। अब ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ किया, मंगलकारी वैदिक मंत्रों का पाठ किया, जिनकी ध्वनि से पूरा वातावरण शुद्ध हो गया, और पुराणों को सुनाने वाले पौराणिक थे, उन्होंने पुराणों का पाठ किया, और गवैयों ने गाने गाए, भेरी दुंदुभी आदि बाजों के साथ में सब प्रकार के मंगल गीत गाए। सौ मंगल्य गिरो विप्रां सूत मागध वंदिनः गायकाश्चा जगुर्ने दुर् भेर्यो दुंदु भयो मुहुं। अब व्रत की कैसी शोभा है, कृष्ण के जन्मोत्सव में व्रत की कैसी शोभा है। नंद महाराज का जो निवास है उसे कहते हैं क्या, ब्रजपुर। क्या कहते हैं, ब्रजपुर। ये ब्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों से और झंडों से पूरा ब्रजपुर सजाया गया है। विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं वस्त्रों से द्वार बनाए गए हैं, और आम की पत्तियों के द्वार बनाए गए हैं पूरे ब्रज में। आंगन, सड़कों के पास के दरवाजे और घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी प्रकार से झाड़ी बुहारी गई और धोई गई। भजा समृत संदिग्त द्वारा जिरे गृहांतर चित्र ध्वज पताका श्रंग चैल पल्लव तोरण। अब ब्रज के जो गाय बैल हैं ये कैसे सजाए गए हैं, गायों बैलों और बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी और तेल के साथ लेप किया गया है। हल्दी और तेल के छाप, हाथ के छाप लगाए गए हैं, और नाना प्रकार के खनिज जो रंगीन धातुएं होती हैं उनसे उनको रंगा गया है। किसको, गायों को बैलों को बछड़ों को रंगा गया है। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया और मालाएं पहनाई गई हैं बैलों को बछड़ों को और गायों को, और उनके ऊपर वस्त्र और सुनहरे आभूषण पहनाए गए हैं। देखो स्त्री पुरुषों की तो बात छोड़ो, गैया बछड़े और बैल इनको भी वस्त्र और गहने पहनाए हैं।
गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल रोषिता विचित्र धातु बरह श्रंग वस्त्र कांचन मालिना।
और जो ग्वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? अत्यंत मूल्यवान गहने कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे हैं। पगड़ी बहुत मूल्यवान पगड़ी धारण किए हैं और कंचुक, कंचुक क्या कहते हैं? कंचुक का मतलब कमर का वस्त्र, कमर में फेंटा। पगड़ी और कमर में फेंटा, बहुत ही कीमती फेंटा है कमर में और पगड़ी है। इस तरह से सज धज कर अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर वे नंद महाराज के घर आई।
महारे वस्त्राभरण कंचुकोष्णी सभूषिता गोपा समाययो राजन नानोपाय में पाणयहां।
अब गोपियां, जो माता गोपियां हैं, दो प्रकार की गोपियां हैं ब्रज में। एक तो प्रेसी गोपियां हैं कृष्ण की और दूसरी माता गोपियां हैं। अभी कृष्ण के जन्म पर जो उत्सव मना रही हैं वो माता गोपियां मना रही हैं, जो यशोदा के समान है। तो माता गोपियां ये सुनकर परम प्रसन्न थीं कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, अतः भी उपयुक्त वस्त्रों गहनों काजल आदि से अपने को सजाने लगी।
गोप्यस्य कर्ण मोदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भोषयाम चक्र वस्त्रा कल्पांजना दिवी।
अब ये जो माता गोपियां हैं इनका वर्णन है। कैसा वर्णन है? बहुत असाधारण सुंदर मुख वाली ये गोपियां हैं, कमल जैसे सुंदर मुख वाली गोपियां हैं। और उनको और अधिक वो सुंदर बनाती हैं केसर से और नव विकसित कुमकुम से। अपने मुख को सुंदर बनाती हैं, अपने हाथों में भेंटे लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल रही हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनके नितंब बड़े बड़े थे, उनके बड़े बड़े स्तन तेजी से चलने के कारण हिल रहे थे।
नव कुमकुम किंजल के मुख पंकज भूते बलभिस्वरितम जगमोह प्रदुश्रोण्य चलत कुचां।
इन गोपियों के कानों में चमचमाते रत्न जटित कुंडल थे, उनके गले में धातुओं के कुंडल लटक रहे थे, धातुओं के लॉकेट, गले में लॉकेट। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे और वेशभूषाएं विविध रंगों की थीं। उनके बालों में लगे फूल रास्ते में गिर रहे हैं, तो तेजी से जा रही हैं, मानो वर्षा, फूलों की वर्षा हो रही हो ऐसे तेजी से भाग रही हैं। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां उनके कुंडल, उनके हिलते स्तन और मालाएं बहुत सुंदर लग रही थीं।
गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ चित्ताम्बरा पति से काचुत माल्य वर्षा नंदालयम सवलया ब्रज तीर विरेजुन व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा।
तात्पर्य में प्रभुपा लिखते हैं, सारी गोपियां अपने अपनी भेंटें लेकर कृष्ण के पास जा रही थीं, क्योंकि ये भगवान की नित्य संगिनियां हैं। अब गोपियां वृंदावन में कृष्ण के आविर्भाव का समाचार पाकर इतनी अधिक प्रफुल्लित थी। अब ये जो गोपियां माता गोपियां हैं, इन्होंने क्या किया? नवजात शिशु कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या कहा? कि तुम ब्रज के राजा बनो और यहाँ के सारे निवासियों का पालन करो। उन्होंने अजन्मा भगवान पर जल और हल्दी और तेल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थनाएं की।
ता आसिता प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलांधि सिंचन त्यो जन्मोज्जगु।
अब ये तो जो है ना गोकुल की बात हुई। अब आकाश में क्या हुआ? आकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सर्वव्यापी असीम भगवान कृष्ण महाराज नंद के ब्रज में पदार्पण कर चुके थे। अतः इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजे, किसके, देवताओं के, आकाश में उत्सव हो रहा है। अबाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्दे नन्दस्य ब्रजमागते। अब गोप लोग जो है ना खुशी में क्या कर रहे हैं, इस उत्सव में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के शरीर पर क्या डालते हैं, ये नहीं डालते, कालिख नहीं लगाते, कालिख नहीं पोतते हैं एक दूसरे को, है ना, आजकल वो करते हैं ना, वो गंदा चीज है, नहीं, दही खीर और मक्खन डालते हैं एक दूसरे के शरीर पर। देखा, एक दूसरे शरीर पर दही खीर और मक्खन तथा जल का मिश्रण छिड़क करके इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और परस्पर शरीरों पर लेप भी किया, एक दूसरे के शरीर पर मक्खन मलते हैं, ये है असली उत्सव। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीरे घृतांबो भी आसिंचन्तो विलिम्बन्तो नवनीते सचिक्षिपुः। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं कि 5,000 वर्ष पूर्व दूध दही और मक्खन की इतनी प्रचुरता थी कि न केवल खाने पीने और भोजन बनाने के लिए पर्याप्त था, अपितु उत्सव के अवसर पर बिना रोक टोक फेंका भी जाता था। मानव समाज में दूध दही मक्खन और ऐसे पदार्थों की चाहे जितनी मात्रा प्रयुक्त की जाए, इस पर कोई रोक ना थी। हर व्यक्ति के पास दूध का प्रचुर संग्रह था, इससे नाना व्यंजन बनाकर लोग प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रहते थे और कृष्ण भावनामृत में जीवन बिताते थे। अब नंद महाराज क्या करते हैं, और भी दान करते हैं, और दान करते हैं, उदार चित्त है, बहुत उदार चित्त है नंद महाराज। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अब ग्वालों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को तो दान दिया ही, ग्वालों को दान दिया, वस्त्र आभूषण और गौएं दान में दी। इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा अपने पुत्र के मंगल के लिए। इस तरह उन्होंने अपने सूतों को, मागधों को, बंदियों को और अन्य भिखारियों को उनकी योग्यता के अनुसार दान दिया, हर एक इच्छाओं को तुष्ट किया। नंदो महामना सेव्यो वासो लंकार गोधनम सोत मांगद वंदेव्यो ये ने विद्योपजीविना तैसे कामेर अधीनात्मा यथोचितम अपूजयन विष्णुराराधनार्थाय सुपुत्रस्योदयाय च। तो विष्णु की आराधना करके, अब वो कृष्ण के प्रति इतना वात्सल्य प्रेम है कि वो नहीं जानते हैं कि उनका जो पुत्र कृष्ण है वो विष्णु का भी क्या है, अंशी है, विष्णु उनके अंश हैं, कृष्ण के, इन विष्णु की पूजा कर रहे हैं कृष्ण के कल्याण के लिए, क्योंकि कृष्ण को अपना पुत्र समझते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, नंद महाराज अपने नवजात शिशु को सुखी देखना चाहते थे, उनका ही उद्देश्य था, इसीलिए वे विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके भक्तों को, जैसे विद्वान ब्राह्मणों को, मागधों को, सूतों को प्रसन्न किया। अब रोहिणी माता वो क्या करती हैं, बलदेव जी की माता रोहिणी है, बहुत भाग्यशाली है रोहिणी माता, क्यों, क्योंकि उनको ब्रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वसुदेव की 17 पत्नियां हैं, 17 पत्नियां हैं, हाँ, तो उनमें रोहिणी सबसे ज्यादा भाग्यशालिनी है जो कि नंद महाराज के घर में रहती हैं। तो कृष्ण के जन्म के उत्सव में रोहिणी क्या करती हैं, नंद और यशोदा के द्वारा बहुत सत्कार पाती हैं रोहिणी माता, और उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण किए, गले के हार माला और अपने अन्य गहनों से अपने को सजाया। जबकि पति अगर प्रवास में हो यानी बाहर हो तो पत्नी को अपने को सजाना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो नियम तोड़ दिया रोहिणी ने, कृष्ण के जन्म के उत्सव में अपने को सजाया। वसुदेव जी तो मथुरा में है, तो रोहिणी के लिए उचित नहीं है कि अपना श्रृंगार करें, पति की अनुपस्थिति में पत्नी के लिए श्रृंगार करना उचित नहीं है, लेकिन ये नियम आज तोड़ा रोहिणी ने कृष्ण के जन्म के लिए। इस उत्सव में रोहिणी माता क्या करती है, जो आए घर में आई हुई स्त्रियां हैं उनका स्वागत सत्कार करने के लिए इधर उधर घूम रही हैं, व्यस्त हैं बहुत सब, स्त्रियों का सत्कार कर रही हैं जो अतिथि हैं। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरण दिव्य वास श्रंग कंठाभरण भूषिता। हाँ, फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर भगवान का शाश्वत धाम है, इसलिए समस्त संपत्ति और ऐश्वर्य वहां निहित है। फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से वो घर लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थली बन गया। नंद महाराज जितना भी दान करें वो घर में कम नहीं होता है, रत्न है, वस्त्र आभूषण है, वो कम नहीं होते हैं, चाहे जितना दान करो, उनका घर भरा है रत्नों से, वस्त्रों से, आभूषणों से। तथा आरम्भ नंदस्य ब्रजा सर्वे समृद्धि माम हरे निवास आत्म गुणे रमा क्रीडम अभून। तो ये तो श्रीमद् भागवत का वर्णन हुआ। अब गर्ग संहिता में काफी विस्तार से इस घटना का वर्णन है नंदोत्सव का, तो ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। गर्ग संहिता में ये कथा नारद जी सुना रहे हैं, किसको? राजा बहुलाश्व को, बहुलाश्व, राजा बहुलाश्व को सुनाते हैं, मिथिलापुरी के राजा हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्र जन्मोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। अतः पुत्रोत्सवम जातम श्रुत्वा नंद क्षणे ब्राह्मणं चा समाहुए कार्यामास मंगलम। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 100,000 गौएं दान की। सविधिं जातकं कृत्वा नंदराजो महामना विप्रेभ्यो दक्षिणाभिश्चय मुदा लक्षं गमं ददौ। अब नंद महाराज ने क्या किया, 7 पर्वत खड़े किए 1 कोस लंबी भूमि में। 1 कोस का मतलब 2 मील, 1 कोस का मतलब 2 मील, और 2 मील का मतलब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की भूमि पर 7 पर्वत उन्होंने खड़े किए। उनके शिखर में रत्न रखे और सोना रखा, और फिर उसके साथ में दूध दही वगैरह सब उसमें सजा करके ब्राह्मणों को दान दिया। विनम्र भाव से ब्राह्मणों को दान किया 7 पर्वत। क्रोश मात्रम रत्न सानु सुवर्ण शिखरान गिरी सरसान सप्त धान्यानाम ददो विप्रेभ्य आनतः। फिर बाजे बजे, कौन कौन से बाजे? मृदंग, वीणा, शंख, दुंदुभी, ये बाजे बारंबार बजाए जाने लगे और नंद के द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे, बारांगनाएं नृत्य करने लगी। मृदंग वीणा प्रणव मृदंग वीणा शंखा दिया ने दुर्दुंद भयो मोह गायका जगुरुद्वारे नृत्युर्वारे योषिता। अब नंद मंदिर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। पताकाओं से, सोने के कलशों से, चंदुओं से, सुंदर बंधनवारों से, अनेक रंग के चित्रों से नंद का भवन बहुत सजा हुआ है। पताकैर हेम कलशैर विताने सुवर्ण शोभे अनेक वर्ण चित्र श्री नंद मंदिरम। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन और बेदियां, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई, जिससे सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। रत्यां वीथ्यश्च देहल्यं भित्ति प्रांगण वेदिकां स्थोलिका मंडप सभा रेजुर्गंधी जलांबरे। गऊओं के सींगों में क्या मढ़ा है? सोना। गायों के सींगों में सोना मढ़ा है और गले में सोने की माला पहनाई गई है और गले में घंटी की झंकार होती है और पैरों में मंजीर की झंकार होती है गऊओं के, और पीठ पर लाल रंग की झूले उड़ाई गई हैं गऊओं के। गावा सुवर्ण सिंगस्या हेमे माला लतम गलाम घंटा मंजीर झंकारा रक्त कम्बल मंडिताम। इस प्रकार समस्त गऊओं का श्रृंगार किया गया, उनकी पूछें पीले रंग में रंगी गई, उनके साथ बछड़े थे उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी है। स्त्रियों ने हाथों की छाप लगाई है किनके ऊपर? बछड़ों के ऊपर। हल्दी कुमकुम और विचित्र धातुओं से छाप लगाई है स्त्रियों ने, किसके ऊपर? बछड़ों के ऊपर। पीत पुच्छा सबत्ताशा तरुणी कर चिन्हिता हरिद्रा कुंकुमेर युक्ता चित्र धातु विचित्रिता। मोर पंख और पुष्पों से अलंकृत कौन है? बैल। मोर पंखों से सजाए गए हैं और फूलों से सजाए गए हैं और सुगंधित जल से नहलाए गए हैं, कौन? बैल। नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित हो रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं बैल नंद महाराज के द्वार पर। बरही पुच्छैर गंध जलैर वृषाधर में धुरंधरम इतस्ततो विरेजो श्री नंद द्वारी मनोहरम। गऊओं के सफेद बछड़े कैसे हैं? सोने की मालाओं से और मोतियों की हारों से विभूषित हैं, इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे हैं। बछड़े उछलते हैं ना बहुत, तो बछड़े उछल रहे हैं, उनके पैरों में भी मंजीर बंधे हैं, तो कैसे झंकार हो रही है? बछड़े जो है ना उछल रहे हैं कूद रहे हैं तो पैरों में मंजीर जो है ना बजते हैं बछड़ों के पैरों में। गोवत्ता हेमे मालाड्या मुक्ताहार विराजिताम इतस्ततो विलंघंतो मंजीरे चरणासिताम। नंदराय जी के यहाँ पुत्र जन्मोत्सव का समाचार सुनकर रानी कलावती, कलावती यानी राधा रानी की माताश्री कीर्तिदा, कलावती नाम है इनका। ये वृषभानुवर कलावती के साथ हाथी पर चढ़ करके नंद के मंदिर में आए। राधा रानी के माता पिता हाथी में चढ़ करके आए, कहां पर? नंद के घर में आए। श्रुत्वा पुत्रोत्सवम दर्शय वृषभानुवरस्तथा कलावत्या गजारूढ़ो नंद।